बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझे। श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। किंतु इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान बाइबल अध्ययन की ओर लगाएं, मन की तैयारी के लिए प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए प्रभु के निकटता में रह करके आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से पहले कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं जिसे पौलुस ने लिखा है। और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दो प्रकार के मनुष्य हैं, प्राकृतिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य, जिसके द्वारा से पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को समझा रहा था कि आत्मिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को समझता है और प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझता और उसके लिए वे सारी बातें मूर्खता की होती हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 में देखेंगे कि परमेश्वर की उचित समझ मसीही सेवा को बाधा मुक्त करती है। जी हाँ, परमेश्वर की उचित समझ मसीही सेवा को बाधा मुक्त करती है। मेरे मित्रों, अध्याय 2 में हमने देखा कि पौलुस मनुष्यों को दो वर्गों में विभाजित करता है, आत्मिक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य। अब वह विश्वासियों को भी दो वर्गों में विभाजित करता है, सांसारिक विश्वासी और आत्मिक विश्वासी। जी हाँ, उनका आत्मिक होना या सांसारिक होना उनके जीवन और उनकी मसीही सेवा से प्रकट होता है। तो आइए आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद को निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों के साथ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। जी हाँ, यह तीसरा वर्ग है। इस वर्ग में वे आते हैं जो मसीह में विश्वास तो करते हैं परंतु सांसारिकता में मग्न हैं। अतः हमने प्राकृतिक मनुष्य के बारे में देखा है और आत्मिक या अलौकिक मनुष्य के बारे में भी देखा, और यह तीसरा वर्ग है, सांसारिक विश्वासी। सांसारिक विश्वासी अब भी मसीह में शिशु अवस्था पर ही है। मेरे मित्रों, इस पत्र के संपूर्ण प्रथम भाग में पौलुस सांसारिकता के बारे में भी चर्चा करता है। पत्र के अंतिम भाग में वह आत्मिकता की चर्चा करेगा। मेरे विचार में पौलुस सांसारिकता की चर्चा करते करते थक गया है, क्योंकि जब हम 12 अध्याय में पहुंचते हैं तब आप उसे लगभग राहत की सांस लेते हुए देखते हैं, और वह अपना चर्चा विषय बदल करके पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के 1 पद में कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। जी हाँ, सांसारिक विश्वासी वह है जो आत्मिकता में विकास नहीं कर पाया और प्रत्यक्षता उसमें आत्मिक विवेक की कमी है। इसलिए नहीं कि उसमें पवित्र आत्मा का अंतर्वास नहीं है, परंतु इसलिए कि वह अनुग्रह और मसीह के ज्ञान में उन्नति नहीं कर पा रहा है। यह परमेश्वर के वचन के साथ उसके संबंध का परिणाम है। जी हाँ, इस पर ध्यान देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सांसारिक विश्वासी अभी मसीह में शिशु ही है। उसमें योग्यता तो है परंतु इच्छा नहीं है। शिशु में ज्ञानी मनुष्य बनने की क्षमता है, परंतु उसका आरंभ दूध पीने से ही होता है। पौलुस इस रूपक को आत्मिक स्तर तक ले जाता है, जिसे हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा ना सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। प्रिय, पौलुस ऐसे मनुष्यों से आत्मिकता की चर्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि वे अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। पहले तो उसे उनकी सांसारिकता के बारे में कुछ कहना होगा। दुर्भाग्य से आज कलीसिया में अधिकांश सदस्य इस स्तर पर ही हैं, अर्थात शिशु अवस्था में। वे विश्वास तो करते हैं परंतु बढ़ते नहीं हैं। आज तक वे दूध ही पी रहे हैं। मेरे प्रियो, हम सांसारिक विश्वासी को कैसे पहचानेंगे? यह वह विश्वासी है जो दुर्बल देहिक भुजा काम में लेता है। वह आत्मिक लक्ष्यों को पाने के लिए सांसारिकता का मार्ग चुनता है। इसका प्रकट उदाहरण वह विश्वासी है जो कहता है, हम भोज का आयोजन करें या आधुनिक संगीत कार्यक्रम को रखें। जी हाँ, यह सांसारिकता है। यूनानी भाषा में सांसारिकता के लिए सार्किकोस शब्द का काम लिया गया है, जिसका अर्थ है मांस। लातानी में या लैटिन भाषा में और फ्रांसीसी भाषा में कारना का अर्थ है विलासिता। वे दुख भोग समय से पूर्व कार्निवल रखते थे, अर्थात देह अलविदा, क्योंकि दुख भोग में वे दैहिक लालसाओं को मारते थे। अतः इससे पूर्व वे दैहिक लालसाओं को पूरी तरह संतुष्ट करते थे, खाना पीना इत्यादि। मेरे प्रियो, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 19 पद में पौलुस ऐसे ही मनुष्यों की व्याख्या में कहता है, उनका ईश्वर पेट है। आप इसे गंवारू न कहेंगे? जी हाँ, यह गंवारू है, परंतु जिन बातों का वह उल्लेख करता है वे और भी अधिक गंवारू हैं। गंवारू का मतलब है बिल्कुल बेकार और गंवार। यह बहुतों के लिए उचित व्याख्या है। उनके उद्देश्य है प्राकृतिक उमंग की पूर्ति करो, देह को अपना काम करने दो, जैसा मन चाहे वैसा जियो, यही उनकी इच्छा होती है। आप संभवतः कहेंगे, मैं सांसारिक विश्वासी नहीं हूं, मैं राग रंग में विश्वास नहीं करता, मैं एक पृथक या अलग विश्वासी हूं। सांसारिकता की पहचान क्या है, पौलुस हमें यहां पर बताएगा। आइए हम देखें पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में, क्योंकि अब तक शारीरिक ही हो, इसलिए कि जब तुम्हें डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मेरे मित्रों, आवश्यक नहीं कि सांसारिक विश्वासी लहरों पर सवार हो या कलीसिया में रंगारंग को बढ़ावा दे। सांसारिक विश्वासी कौन है? आप उसका प्रमाण कहां से पाते हैं या कैसे देखते हैं? जहां पर विभाजन और झगड़े हो, वहां वास्तव में दैहिक लालसा की पूर्ति होती है। अधिकांश आधारभूत कलीसिया में विभाजन, पीठ पीछे बुराई, कलह और कड़वाहट देखी जा सकती है। जहां यह सब होता है, वहां हम निश्चित रूप से जान लें कि दैहिक लालसाएं अपना प्रदर्शन कर रही हैं। जी हाँ, कभी कभी विश्वासी क्रोध करके और उस पर पर्दा डालते हुए कहते हैं, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, वे तुच्छ प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे मित्रों, आप संडे स्कूल की कक्षा में या दैहिक लालसा की पूर्ति का समय बना सकते हैं। आप किसी सेवा संस्था में भी क्यों ना हो, दैहिक लालसा का स्थान बना सकते हैं। प्रार्थना सभा को भी दैहिक लालसा का समय बना सकते हैं। यदि आप वहां पीठ पीछे बुराई, कलह, ईर्ष्या और विभाजन उत्पन्न कर रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि आप दैहिक मनुष्य हैं। मेरे मित्रों, आवश्यक नहीं कि आपको सांसारिक या दैहिक होने के लिए संसार के पीछे भागना है। सुनिए कि पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3:4-6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है कि मैं अपौलुस का हूँ, तो क्या तुम तो मनुष्य नहीं? अपौलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि हम दोनों ही परमेश्वर के सेवक हैं। पौलुस एक सेवक था, उसने नए नए स्थानों में कलीसियाओं की स्थापना की। अपौलुस आया और उसने सभाएं की, वचन का प्रचार किया तथा पवित्र जनों को स्थिर किया। दोनों ही तो मूल रूप से परमेश्वर के सेवक थे। अब हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों के पत्र 3:7 में, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। मेरे प्रियो, मुख्य बात प्रचारक की नहीं, परमेश्वर द्वारा उसे काम में लेने की होती है, क्योंकि परमेश्वर उसे काम में ले रहा है। इसलिए सारा श्रेय परमेश्वर को ही जाता है। परमेश्वर की स्तुति और महिमान्वन करो कि वह आपको इस्तेमाल कर रहा है। 1 कुरिन्थियों के पत्र 3:8 में लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपने ही मजदूरी पाएगा। जी हाँ, हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर अनेक सेवकों को काम में लेता है, चाहे वे अलग अलग रीति से काम कर रहे हों, छोटा या बड़ा। अतः हमें परमेश्वर का काम करने वाले किसी भी सेवक की आलोचना नहीं करना चाहिए। सेवक प्रायः अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं, उनकी कार्यविधि मुझसे अलग हो सकती है, परंतु परमेश्वर उन्हें काम में लेता है। हम सब परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं। 1 कुरिन्थियों के पत्र 3:9-10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। जी हाँ, नींव तो 2010 वर्ष पूर्व रख दी गई थी। आप और मैं यह काम नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि मसीह यीशु की ओर संकेत करें। वही हमारी नींव है। हम उस नींव पर निर्माण कर सकते हैं। मुख्य एवं महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। जी हाँ, सुसमाचार लोगों को सुनाएं। वही एकमात्र मानव उद्धार का करता है। हम 1 कुरिन्थियों के पत्र 3:11 में पढ़ते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मेरे प्रियो, क्या आप उस पर निर्माण कर रहे हैं? एक विश्वासी के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मसीह के पास कर्मों से रहित आए थे? आप कुछ लेकर नहीं आए थे कि बदले में आपको कुछ मिले? आपको उस चट्टान पर स्थिर किया गया है जो मसीह है। अब आपको उस पर निर्माण करना है। यही आकर अच्छे कर्मों का समय होता है। आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस कहता है कि आप इस पूर्व निर्मित नींव पर 6 प्रकार की सामग्री से निर्माण कर सकते हैं, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास और पूस। इस सूची में व्यक्त पहली 3 सामग्री तो आग में भस्म नहीं होगी, परंतु आग से परिशुद्ध हो जाएगी। जी हाँ, परंतु निश्चय ही आग अन्य 3 सामग्रियों को भस्म कर देगी। विश्वासियों को स्वतंत्रता है कि वे इन 6 सामग्रियों में से किसी को भी काम में लें, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी या घास फूस। मेरे प्रियो, यहाँ विश्वासी को प्रतिफल पाने की बात की गई है। यदि मनुष्य के काम स्थिर रहें, जो नींव पर किया गया निर्माण है, तो उसे प्रतिफल मिलेगा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। मेरे मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के निर्माण का विश्वासी को प्रतिफल अवश्य मिलेगा। मेरे विचार में आज अनेक पवित्र जन हैं जो परमेश्वर प्रायण है। मैंने कुछ लोगों से भेंट भी की है और कुछ से व्यक्तिगत भेंट तो कुछ से पत्रचार के द्वारा संपर्क किया है। परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से काम में ले रहा है। जी हाँ, वे स्वर्ण निर्माण कर रहे हैं। आप तो भली भांति जानते हैं कि सोने का एक टुकड़ा घास के पूले के समान बड़ा नहीं दिखता है। केवल परमेश्वर ही है जो सोने की परख कर सकता है। जी हाँ, मैंने खेतों का भ्रमण किया है और मेरे विचार में मैंने 30 किलोमीटर दूर से घास के पूलों को देखा है। अनेक विश्वासी घास से निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, और उनकी चर्चा सर्वत्र है। एक दिन निर्माण कार्य का परीक्षण किया जाएगा और उसे आग से परखा जाएगा। लकड़ी और फूस के निर्माण को भी ऐसे ही परखा जाएगा और वे जल जाएंगे। हम पहले कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे मित्रों, यहाँ विरोधाभास को देखिए। जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, अर्थात नींव पर किया गया निर्माण, तो वह उसका प्रतिफल पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। वह नींव पर आधारित है तो उद्धार से वंचित तो नहीं होगा, परंतु उसका प्रतिफल नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, आज आप कैसा निर्माण कर रहे हैं? यदि आप सोने से निर्माण कर रहे हैं तो आज वह प्रभावशाली कार्य प्रतीत नहीं होगा। यदि आप घास से निर्माण कर रहे हैं तो वह बहुत दूर से भी दिखाई देगा, परंतु अंत में वह आग में भस्म हो जाएगा। मैं अपने विचारों में इसे व्यक्त करता हूँ। स्वर्ग में कुछ ऐसे विश्वासी उपस्थित होंगे जिनका आधार मसीह यीशु ही है, परंतु उनके पास धुएं की गंध आ रही होगी। उनके सब काम भस्म हो जाएंगे। उन्हें अपने कर्मों का प्रतिफल नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, अब यदि आप दैहिक विश्वासी हैं तो आप प्रतिफल की आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में नहीं हैं। दैहिक विश्वासी वह है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। पौलुस द्वारा व्यक्त 3 वर्ग हैं जो परमेश्वर के वचन के संबंध में हैं। प्राकृतिक मनुष्य क्रूस को मूर्खता कहता है, और आत्मिक मनुष्य वचन को समझता है और उसे आत्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, और दैहिक मनुष्य या विश्वासी कहता है हम परमेश्वर के वचन की अपेक्षा संगीत सुने। दैहिक विश्वासी की यही पहचान है। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की संतान पवित्र आत्मा का मंदिर है। पौलुस इस विषय पर फिर हमें चर्चा करेगा और बताएगा, हमारी देह ज्यों की त्यों परमेश्वर की है, क्योंकि इसे परमेश्वर ने बनाया है और यह उसी का मंदिर है। मित्रों, हम आगे देखते हैं, विश्वासी को मसीह सब कुछ प्राप्त है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद में, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। दुर्भाग्य से हमारी अधिकांश सेवा संस्थाएं बौद्धिक प्रचारक उत्पन्न कर रही हैं। मैंने कुछ का प्रचार सुना है, परंतु वे बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बहुत कम हैं जो वास्तव में बुद्धि काम में लेते हैं। जी हाँ, क्या मैं एक बार फिर कह सकता हूँ कि महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें और उसी का प्रचार करें। काश मैं यह तथ्य उस बाइबल अध्ययन स्थानों में बुद्धिमान युवाओं तक पहुंचा पाता। मेरे प्रियो, मुझे अनेक ऐसे बाइबल अध्ययन के समूह में प्रबोधन का अवसर मिला है और मैंने वहां अनेक युवकों से भेंट की है जो ज्ञानवान बनना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को जानने वाले कम मिलते हैं, परंतु ज्ञानवान अधिक बनना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19-23 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मेरे प्रिय मित्रों, यह कैसी अद्भुत बात है कि हमें किसी संकीर्ण समूह या किसी कलीसिया विशेष से बंधने की आवश्यकता नहीं है। इस भावना की अपेक्षा कि किसी विशेष कलीसियाई वर्ग के हैं और केवल एक ही प्रचारक या शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करें। हम यह जान ले कि परमेश्वर के सब सेवक हमारे अपने हैं। ओह, यह कैसी अद्भुत बात है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पेंतिकोस्तल भाइयों के साथ मेरे सद्भाव का कारण है कि मैं जानता हूं कि वे परमेश्वर के जन है। ओह मेरे मित्रों, वे भाई मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ। मसीह को केंद्र में रखकर अन्य विश्वासियों के साथ संबंध रखना कैसी महान बात है। जी हाँ, उस नींव पर स्थिर हैं जो मसीह यीशु है। अब प्रश्न यह है कि आपका नींव क्या है? क्या आज अपने कलीसिया को आप नींव समझते हैं या मसीह यीशु को? मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर मुझे और आपको इस बात की शिक्षा दे रहा है और फिर से इस बात का हमें स्मरण दिला रहा है कि हम कौन हैं। हम आत्मिक मनुष्य हैं या दैहिक मनुष्य हैं या प्राकृतिक मनुष्य हैं? हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है? आज पौलुस से कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात से स्मरण दिलाता है कि सब कुछ व्यर्थ है, परंतु इस बात पर महत्व देता है कि मसीह यीशु हमारा नींव हो, हम उसी में स्थिर व केंद्रित हो, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दे सकें। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज फिर से आपने अपने जीवन में नई बातों को प्राप्त किया है और अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, फिर गई है कलिया नई, यीशु बाहर लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलिया नई, बाहर लाया है
जिंदगी मेरी।
पल का किसने है जाना, होगा क्या कल का,
घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, यीशु बाहर लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा,
मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा,
भक्त के हो को राह दिखाने, भक्त के हो को राह दिखाने, इस धरती पे आया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है,
खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है
जिंदगी मेरी।
जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भर